आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
दोस्तों, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने पार्किंसन डिजीज से पीड़ित लोगों के इलाज को आसान बनाने के उद्देश्य से एक लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्शन विकसित कर लिया है। इस रिसर्च से संबंधित शोधकर्ताओं को उम्मीद है कि ये वीकली ट्रीटमेंट एक दिन कई दैनिक मौखिक दवाइयों की आवश्यकता को पूरा कर सकेगा, लेकिन फिलहाल इसके पशु परीक्षण और क्लिनिकल ट्रायल्स जारी हैं। ऐसे में हम जुड़े प्रोफेसर संजय गर्ग के साथ, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया के सेंटर फॉर फार्मास्यूटिकल इनोवेशन में काम करते हैं।
थैंक यू भव्या जी, मैं SBS का रेगुलर लिसनर हूं एंड इट्स ग्रेट टू बी एबल टू टॉक टू यू। थैंक यू
जी। तो संजय जी, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमें अपना हल्का सा परिचय दे दें, ताकि हमारे श्रोताओं को पता चल जाए कि आज हम किस विषय पर बातचीत करने वाले हैं।
मेरा नाम संजय गर्ग है। मैं यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया में फार्मेसी स्कूल में प्रोफेसर हूँ और एडलेड में रहते हैं हम लोग। और यहाँ पर मेरी लैब में हम लोग काफी रिसर्च करते हैं नई मेडिसिन को डेवलप करने के लिए। तो ये जो आज का टॉपिक है वो भी उसी से रिलेटेड है। इट्स अबाउट वन ऑफ माई रिसर्च प्रोजेक्ट्स।
जी, तो संजय जी, यदि हम इस रिसर्च को और विस्तार से जानें, तो ये पार्किंसन जो डिजीज है उससे संबंधित है, तो मैं चाहूंगी कि आप हमें बताएं इसके बारे में और कुछ।
पार्किंसन एक दिमाग की तकलीफ है जिसमें डोपामिन जो एक पार्ट होता है बॉडी का, उस एंजाइम होता है बॉडी में जो प्रोड्यूस होता है, वो उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है। और जनरली ये सीनियर एज ग्रुप में ज़्यादा होता है। और ऑस्ट्रेलिया में करीब 1.5 लाख लोग हैं जिनको पार्किंसंस है, और बाकी ऑब्वियसली पूरी दुनिया में तो बहुत ज़्यादा है। तो पार्किंसंस में जनरली जो लोगों के मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है, आपने देखा होगा कुछ लोगों के हाथ कांपने लगते हैं, चलने में उनको तकलीफ होती है, उस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। जो जनरल ट्रीटमेंट है इसका, उसमें दो ड्रग्स हैं जो काफी कॉमनली यूज होती हैं, लिवोडोपा एंड कार्बिडोपा। ये दोनों दवाएं टैबलेट की फॉर्म में अवेलेबल है मार्केट में, और इनको दिन में 3 से 4 बार लेना होता है।
जी।
काफी पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको टैबलेट को स्वेलो करने में मुश्किल होती है। कुछ लोग हैं जो भूल जाते हैं, और भूल जाते हैं तो फिर उनको साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो उसकी वजह से लोगों में कंप्लायंस का इशू है कि टैबलेट्स हैं तो अवेलेबल, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब भी कर दी, उनके पास हैं भी, फिर या तो उन्होंने नहीं ली या वो ले नहीं पाते हैं। तो उन सिचुएशंस को डील करने के लिए हमने अपनी लैब में रिसर्च करके एक इंजेक्शन डेवलप किया है जो 1 हफ्ते के लिए काम करेगा, सिंगल इंजेक्शन, एंड इट विल वर्क फॉर 1 वीक, और उसमें पेशेंट को कोई भी टैबलेट्स उसके बाद नहीं लेनी पड़ेंगी।
तो संजय जी, पूछना चाहूंगी कि ये जो इंजेक्शन है, इसको लेने से क्या किसी तरह के साइड इफेक्ट्स देखे जा सकते हैं, या ये बिल्कुल किसी भी साधारण दवा जैसा ही है?
सो इंजेक्शन में हमने जो दवाइयां यूज की हैं, वो दोनों वही दवाइयां हैं जो टैबलेट्स में होती हैं। तो जो भी उनके टैबलेट्स के साइड इफेक्ट्स हैं, थोड़े जो भी उन ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स हैं, वो तो रहेंगे ही, लेकिन कोई एडिशनल साइड इफेक्ट उसका नहीं होगा। इसमें कोई नई दवाई नहीं है, ये सिर्फ एक अलग तरीके से दवा को लेने का तरीका है। मतलब सेम दवाइयां पर टैबलेट की बजाय आपको दिन में 4 टैबलेट की बजाय हफ्ते में 1 इंजेक्शन लेना होगा पेशेंट को। तो कोई एक्स्ट्रा साइड इफेक्ट नहीं है, बट अभी मैं गारंटी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि हमने कोई ह्यूमन स्टडीज इसकी नहीं की है अभी तक। हमारी जो रिसर्च है अभी तक लैब बेस्ड है। लैब के जो हम लोग जनरली जैसे फार्मा प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं, तो उसके बेसिस पे काफी सारे टेस्ट हैं जो हम लोग करते हैं, और उससे ये पता चलता है कि 1 हफ्ते तक चलना चाहिए। लेकिन इसका जो आपका जो क्वेश्चन है अबाउट टॉक्सिसिटी और साइड इफेक्ट्स, वो तो ट्रायल के बाद ही पता चलेगा फाइनली।
बिल्कुल बिल्कुल। तो संजय जी, ये पूछना चाहूंगी कि जब इस तरह की रिसर्च होती है, तो इसके पीछे की प्रक्रिया कैसी होती है, मतलब कितना समय लगता है और कितने लोगों की मेहनत लगती है ऐसा कोई ब्रेक थ्रू सामने लाने के लिए?
ये काफी इन्वॉल्विंग एक्सरसाइज होती है, काफी महंगा प्रोसेस भी है. सो पहले तो आपको काफी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो हमारे पास यहाँ फार्मेसी स्कूल का यूनिवर्सिटी का पार्ट है तो उसमें हमारे पास है. ऑस्ट्रेलिया में 3-4 मोनाश यूनिवर्सिटी है, सिडनी है, यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड है, और यहाँ हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया में है. तो 3-4 जगहों पर ऐसी फैसिलिटीज है जहाँ इस तरह की रिसर्च की जा सकती है यूनिवर्सिटी सेक्टर में, और इंडस्ट्री में भी होती है ऑब्वियसली, जो फार्मा कंपनीज हैं वो भी करते हैं. तो इसमें इसका जो नॉर्मल प्रोसेस है कि पहले तो कोई मेरे जैसा साइंटिस्ट जिसको लगे कि हाँ मेरे को इस फील्ड में काम करना है, पहले तो वो होना चाहिए. फिर उसके बाद हम लोग जनरली क्या करते हैं कि हम डॉक्टर्स को काफी कंसल्ट करते हैं. तो वी ट्राई टू फाइंड कि रियल इश्यूज क्या है फील्ड में जिनके लिए, बिकॉज अगर पेशेंट ने दवाई नहीं ली, भूल गया, तो उसको साइड इफेक्ट हुए तो जाके डॉक्टर को बोलते हैं कि कल मैंने दवाई नहीं ली थी तो मुझे तकलीफ हो गई, या उनको हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है. तो डॉक्टर्स को ऐसी चीजें पता होती हैं कि कहाँ कहाँ गैप्स हैं. तो हम लोग, मैं जनरली बहुत कोशिश करता हूँ कि डॉक्टर से बात करता रहूँ कि क्या अनमेट नीड्स हैं, क्या ऐसी जरूरतें हैं जिनके लिए कुछ हम लोग कर सकते हैं कंट्रीब्यूट. सो वो करने के बाद वहां से फिर देन वी स्टार्ट लुकिंग फॉर टेक्नोलॉजीज कि अभी प्रॉब्लम तो हमें पता चल गई, इसको सॉल्व करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा. सो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर हम, जैसे मेरे पास एक पीएचडी स्टूडेंट है दीपा, जिसका इसमें, जिसने इस पे काम किया है, तो वो पीएचडी स्टूडेंट जिसने इस पे काम किया, प्रॉब्लम को हम लोग अपनी फार्मा टेक्निक्स को, काफी इसमें इनोवेशन लगती है, बाकी लोग टीम के लोग भी हैं, तो मेरी टीम करीब 15 लोगों की है, सब लोग अलग तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं. एंड उसके बाद फिर पैसा भी लगता है ऑब्वियसली, जो जैसे स्टाफ है तो उनकी सैलरीज के लिए कहीं से फंडिंग जनरेट करनी होती है
जी.
और रिसोर्सेज लगते हैं, एक्सपर्टीज लगती है. तो इट्स एन इन्वॉल्विंग प्रोसेस.
आखिरी सवाल यही पूछना चाहूंगी संजय जी कि जिन लोगों को इस डिजीज के बारे में इतना नहीं पता है वो इसके सिम्टम्स को किस तरह से समझ सकते हैं?
जनरली जो पेशेंट्स होते हैं उनको जब वो सिम्टम्स होने शुरू होते हैं तब वो डॉक्टर के पास जाते हैं. इसमें जनरल जो सिम्टम्स है वो मोशन रिलेटेड हैं कि आपको चलने फिरने में या मूवमेंट में या हाथ की, जैसे वो मैंने बताया कि हाथ कांपने लगते हैं लोगों के, उस तरह की तकलीफें होती हैं इसमें. तो वही सिम्टम होते हैं लोगों को जब वो टैबलेट्स वगैरह लेने भूल जाते हैं. तो द मेडिसन्स वर्क वेल, ओरल टैबलेट्स भी अगर आप रेगुलर लेते रहें तो ठीक काम करती हैं, वैसे मुश्किल नहीं है. पर अभी जब से हमारी ये न्यूज परसों टीवी पे आई थी एबीसी पे, उसके बाद से इतने सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आए हैं कि पेशेंट टैबलेट नहीं ले सकता है और स्वेलोइंग में डिफिकल्टी होती है और भूलना तो बहुत ही कॉमन है उस एज ग्रुप के लिए और उस तरह के पेशेंट्स के लिए. सो जरूरत तो है इसकी, अब आगे डेवलपमेंट का पाथ है, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं.
तो संजय जी आपका आज SBS हिंदी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया.
थैंक यू वेरी मच भाव्या जी, एंड थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी. थैंक यू.
इस अंश में प्रस्तुत की गई सभी जानकारी और विचार व्यक्तिगत हैं. SBS ना तो इनसे सहमत है और न ही असहमत. SBS न्यूज के लिए इस खबर को आप सबके सामने SBS हिंदी में लेकर आई भव्या पांडे.
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद. हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं.